त्रिशूल अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार और शशि कपूर स्टारर एक एक्शन पैक्ड फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने, म्यूजिक दिया था खय्याम साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म शुरू होती है गाने से जहां राज और शांति दोनों ये गाना गा रहे हैं।
आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं।
कुछ भी नहीं तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों पागल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों पागल कहते हैं।
गाना खत्म होता है। राज जो फिल्म का हीरो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है और कोई उसे आगे कहता है कि उसे मालिक बुला रहे हैं। राज उस कंपनी के मालिक से मिलने जाता है तो वो उसे एक नया साइट दिखाते हैं और कहते हैं कि वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। शाम को वो उसे अपने घर आने को कहते हैं और वो भी अपनी माँ के साथ। उसी कंपनी का एक और मुलाजिम बलवंत राय इस बात को लेकर बहुत खफा रहता है कि सेठ राज को इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। शाम की पार्टी में सेठ राज की माँ से कहते हैं कि वो अपनी इकलौती बेटी कामिनी की शादी राज से करना चाहते हैं। इधर राज अगले दिन शांति को लेकर माँ के पास पहुँचता है तो उसकी माँ शांति के सामने तो कुछ भी नहीं कहती, पर उसके जाते ही राज को कहती है कि उसे कामिनी से शादी कर लेनी चाहिए।
क्या बात है माँ, तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा? मैं जानना चाहता हूँ माँ।
क्या जरूरत है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे अच्छा लगे या बुरा क्या फर्क पड़ता है?
तुम जानती हो माँ मुझे फर्क पड़ता है, तुम अच्छी तरह जानती हो।
तो सुनो, मैंने सारी जिंदगी जितने सपने देखे सब तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने आज मुझे शादी का फैसला सुनाकर मेरे उन तमाम सपनों को एक ही ठोकर में चकनाचूर कर दिया।
लेकिन ऐसी क्या खराबी है शांति?
मैंने कब कहा कि शांति में कुछ खराबी है? मैं जानती हूँ एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जिस लड़के से शादी करेगी उसे जिंदगी भर सुखी रखेगी, खुश रखेगी।
और तुम नहीं चाहती वो खुशी मुझे मिले?
हाँ मैं नहीं चाहती, क्योंकि जिंदगी की मामूली खुशियाँ मामूली इंसानों के लिए होती हैं, और तुम कोई मामूली इंसान नहीं, तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हें जिंदगी की बड़ी खुशियाँ मिलनी चाहिए।
सब बेकार की बातें हैं, साफ क्यों नहीं कहती शांति तुम्हें बहू की जगह पसंद नहीं?
क्यों पसंद नहीं होगी, क्या मैं इतना नहीं देख सकती कि वो एक नेक और अच्छी बहू बनेगी? सारी जिंदगी मेरे पांव छुएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरा आदर करेगी, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं, मैं इस वक्त अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी फिर दीनदयाल की बेटी कामनी से हो जानी चाहिए।
कामनी से मेरी शादी का ये ख्याल तुम्हें आया कैसे माँ?
ये ख्याल मुझे नहीं सेठ दीनदयाल को आया है, उन्होंने पार्टी में मुझसे बात की थी, वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं और अपनी कंपनी में तुम्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं।
ये तुम क्या कह रही हो?
मैं ठीक कह रही हूँ, सोच लो, एक तरफ ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली क्लर्क लड़की शांति है, जिससे शादी करके तुम्हें सिवाय जिम्मेदारियों के बोझ के और कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ कामनी सेठ दीनदयाल की बेटी, जिससे शादी करके तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के आधे मालिक होगे, जिससे शादी करके तुम जिंदगी की हर वो चीज हासिल कर सकोगे जिसकी तुमने कभी तमन्ना की होगी।
मैं शांति से मोहब्बत करता हूँ।
शांति से बहुत पहले तुम मुझसे मोहब्बत करते हो।
लेकिन मैं उसे वादा कर चुका हूँ।
उस वादे से बहुत पहले तुमने अपने आप से एक वादा किया था कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे, कुछ हासिल करोगे। राज, तुम जज्बात के धोखे में आकर इस मौके को ठुकरा नहीं सकते, तुम्हें कामनी से शादी करनी चाहिए, तुम्हें कामनी से शादी करनी होगी।
राज पहले तो नहीं मानता पर आखिरकार तैयार हो जाता है। और कामिनी और राज की शादी हो जाती है। शांति उसे मिलने आती है और मुबारकबाद देने के बाद कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है।
शादी मुबारक हो। तुमने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं।
बैठूं?
नहीं चलूंगी। इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, तुम्हें तो बहुत काम होंगे। मैं सर मुबारकबाद देने आई थी, वो दे दी। हाँ एक बात और, तुम्हें तो शायद कोई दिलचस्पी ना हो, लेकिन मैं एक बार तुम्हें बता देना अपना फर्ज समझती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गुड बाय राज।
ये कहकर वो चली जाती है। शाम को राज उसके घर मिलने के लिए जाता है। इससे पहले वो कुछ बोले, शांति कहती है,
मेरी मदद करने आए हो? कितने रुपये लाए हो बोलो? तुम जानते हो आज भी तुम मेरी मदद करने नहीं आए, मुझसे मदद मांगने आए हो। कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा पर बोझ है। तुम मुझे बहुत से रुपये देकर, शायद एक मकान देकर, सारी जिंदगी मेरे जीने का इंतजाम करके अपनी आत्मा से वो बोझ उतारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये मदद लेने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ तुमसे, तुम्हारे इस शहर से दूर। मैं जहां भी रहूंगी इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसे पालूंगी, इसे बेहद प्यार करूंगी, इसलिए कि मेरा बच्चा मेरी उन दिनों की निशानी होगा जब मैंने सचमुच किसी से प्यार।
शांति को बेटा होता है, उसे लेकर वो भटकती फिरती है, जगह जगह काम करती है और बच्चे की परवरिश करती है। शांति का एक सपना है कि वो अपने बेटे को बहुत मजबूत बनाए। स्क्रीन पर उस वक्त ये गाना आता है।
तू मेरे साथ रहेगा, परवान चढ़ाने के लिए इतनी संगीन मराहिल से तेरी माँ गुजरी। तू मेरे साथ रहेगा।
शांति का बेटा विजय बड़ा हो जाता है और बारूद से खेलता है, जैसे उसे कोई मौत का डर ही नहीं। उसकी माँ मरते वक्त उसे एक माला देती है और कहती है कि ये हमेशा माँ की निशानी समझकर अपने पास रखे, और कहती है कि जिंदगी में कभी कमजोर ना बने।
तुझे झांकूंगी जख्म सीने में लिए, बोली गाहों में लिए। मेरा हर दर्द तुझे दिल में बसा, मेरा कर्ज चुका।
आज तक मेरी मां के प्यार ने मुझे रोक रखा था, लेकिन अब मैं आ रहा हूं मिस्टर आरके गुप्ता।
विजय शहर पहुंचता है, वहां आरके गुप्ता का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बिजी इंसान है। एक मिनट की उन्हें फुर्सत नहीं, यहां तक कि उनका बेटा शेखर सालों बाद विदेश से घर आ रहा है, पर उनके पास एयरपोर्ट पर भी जाने का वक्त नहीं। उनकी सेक्रेटरी का नाम है गीता, जो बहुत ही काबिल है और सारे काम को बखूबी संभालती है। कामिनी और बबली शेखर को लेने एयरपोर्ट पर जाते हैं। शेखर ऑफिस आता है, वो गीता को बहुत पसंद करता है और कहता है कि वो कंप्यूटर है, उसे सब जवाब मालूम है। तभी गीता बताती है कि मॉडल टाउन की वो जमीन जिस पर 6 साल से केस चल रहा है उसकी डेट पड़ी है। दरअसल माधो सिंह नाम का एक गुंडा उस जमीन पर कब्जा करके बैठा है। विजय राज से मिलने आता है और कहता है कि अगर आरके वो जमीन उसे दे दे तो 15 दिनों में 5 लाख रुपए चुका देगा।
जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? जिस अंदाज में तुमने मुझसे इंटरकॉम पर बात की थी, मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही तेज और समझदार आदमी हो जिसे अपने आप पर भरोसा है और जो मेरे सामने एक बहुत ही समझदारी की स्कीम लेकर आएगा। लेकिन तुम एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो जिसे शायद अचानक अपने बाप दादा की दौलत मिली।
मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी मां का दिया हुआ आशीर्वाद।
और एक बात और बता दूं आपको मिस्टर आरके गुप्ता, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ियां भी नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप ये जमीन मुझे दे देते हैं तो आपके ये 5 लाख आपको 15 दिन में मिल जाएंगे।
भंडारी कमें, मैं देखना चाहता हूं मिस्टर विजय कुमार, जो काम उसे 6 साल में नहीं हो सका वो तुम 15 दिन में कैसे करते हो। मिस्टर भंडारी आप अभी इसी वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए। ये मिस्टर विजय कुमार हैं, ये हमारी मॉडल टाउन वाली जमीन खरीदना चाह रहे हैं। यस, कॉन्ट्रैक्ट का मेन क्लॉज होगा कि अगर मिस्टर विजय कुमार ने 5 लाख रुपए की पेमेंट 15 दिन में नहीं की तो हम इनको धोखे और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार करवा सकते हैं। राइट
राइट,
ओके सर, आइए
आप जाइए इनके सर।
थैंक यू मिस्टर गुप्ता।
विजय एक फाइनेंसर के पास जाता है और 5 लाख मांगता है। उसका कहना है कि वो उस जमीन पर वही कॉलोनी बनाएगा जो आरके नहीं बनवा सका, और अगले ही दिन वो माधव और उसके गुंडों को मार भगाता है। विजय 5 लाख का चेक लेकर आरके के ऑफिस में जाता है, वहां उसकी मुलाकात शेखर से होती है। वो उसे 5 लाख का चेक देता है, शेखर बहुत इंप्रेस हो जाता है। आरके कहता है कि ये आदमी एक ना एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। विजय उस जमीन पर शांति कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड लगवाता है। शेखर के पास एक लड़का जॉब के लिए आता है, दरअसल वो बबली का दोस्त है, उसका नाम रवि है, पर वो सिफारिश नहीं चाहता। शेखर उसे काम पर रख लेता है। शेखर किसी कंपनी के जनरल मैनेजर से मिलने जाता है, उसका नाम शीतल है। उसे देखकर शेखर बहुत इंप्रेस हो जाता है। शेखर को दरअसल पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। दोनों ये गाना गाते हुए नजदीक आ जाते हैं।
डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। हर कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, हो जाने मन तुम कमाल करती हो।
विजय गीता को लिफ्ट देने के बहाने एक ऑफर करता है और वो ऑफर ये है कि डागा शॉपिंग कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर वो उसे बता दे तो उसे बहुत सारे पैसे देगा। दरअसल विजय टेंडर का अमाउंट जानना चाहता है ताकि उसे ये काम मिल जाए, पर गीता ये काम करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो बिकाऊ नहीं है। आरके का एक खास आदमी है जिसका नाम भंडारी है, उसकी करखेल है जिसके लिए एक गुंडा उसे बहुत ब्लैकमेल करता है। विजय उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसे उस गुंडे से हमेशा के लिए निजात दिलवा देगा।
गंगू अब तक आपसे कितने पैसे ऐंठ चुका है?
अरे आहिस्ता बोलिए, उस घर में और लोग भी हैं। आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं?
इसकी फिक्र मत कीजिए भंडारी साहब, फिलहाल तो आप अपने मतलब की बात सुनिए। मैं आपको गंगू से छुटकारा दिला सकता हूँ।
कैसे?
डागा शिपिंग कॉरपोरेशन को मिस्टर आर के गुप्ता जो टेंडर भेज रहे हैं वो कागज वहां जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ।
समझ गया, मगर पहले आप गंगू का बंदोबस्त करवा देंगे?
वो सड़क से नहीं गुजरेगा जिस पर आपका आना जाना हो।
अगर हुजूर मेरा काम कर रहे हैं तो समझिए कि आपका काम भी हो गया, मगर पहले मेरा काम हो जाना चाहिए।
भंडारी तैयार हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट विजय को मिल जाता है। आरके को विश्वास नहीं होता क्योंकि विजय ने सिर्फ 1 रुपए कम भरे थे। वो गीता को बुलाकर कहता है कि उसने 3000 रुपए जो एडवांस मांगे थे भंडारी से जाके ले ले। विजय अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने अपना बदला लेना अब शुरू कर दिया है। विजय के पास भंडारी आता है और कहता है कि वो मानिकलाल हॉस्पिटल का टेंडर भी लेके आया है और कुछ पैसे लेके चला जाता है। उधर इत्तफाक से गीता और बबली की मुलाकात विजय से एक शोरूम पे हो जाती है। विजय दरअसल गीता से माफी मांगता है, पर विजय के साथ गीता को देखकर आरके सोचता है कि गीता उससे मिली हुई है और वो उसे बेइज्जत करके नौकरी से निकाल देता है। विजय को जब ये बात मालूम चलती है तो वो भंडारी को मारता हुआ लेकर आरके के सामने पहुंचता है और उसे सच बताता है।
यही है वो आदमी जो थोड़े से पैसों के लिए आपके टेंडर्स मेरे पास लाता था और जिसकी जगह आपने उस शरीफ और ईमानदार लड़की को निकाल दिया। यही है वो आदमी।
भंडारी, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
आई एम सॉरी सर।
यू ब्लडी, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। आइंदा इस ऑफिस में कदम रखने की कोशिश मत करना।
विजय साहब, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं शेखर साहब, यूं तो मेरी मिस गीता से कोई ऐसी जान पहचान नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उस पर कोई इल्जाम लगे।
लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? भंडारी तुम्हारी मदद कर रहा था, उसकी चोरी पकड़वा के तुमने अपना नुकसान क्यों किया?
जिंदगी में कुछ बातें फायदे और नुकसान से ऊपर होती हैं, लेकिन ये बात कुछ लोग नहीं जानते। गुड बाय मिस्टर आरके गुप्ता।
विजय गीता को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है और गीता मान जाती है। दरअसल विजय को मेहनती और ईमानदार लोगों की जरूरत है क्योंकि शांति कंस्ट्रक्शन को वो बहुत बड़ा करना चाहता है। गीता और विजय में काम के साथ साथ नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। विजय गीता से कहता है कि जिस काम को दूसरों ने 25 साल में किया है वो उसे 1 साल में करना चाहता है क्योंकि उसके पास वक्त की बहुत कमी है। विजय अपनी कंपनी की कामयाबी को लेकर एक पार्टी रखता है जहां खास तौर पर आरके को बुलाया जाता है। शेखर और शीतल भी वहां आते हैं। दोनों को नजदीक देख विजय दोनों में दरार पैदा करने की कोशिश करता है। आरके विजय की पार्टी में आता है और कहता है उसकी कामयाबी के पीछे उसके भी तो टेंडर का हाथ है। विजय हंसते हुए कहता है कि वो किसी का कर्ज नहीं रखता, एक न एक दिन वो इस कर्ज को जरूर उतार देगा। आरके के घर बबली यानी कुसुम का दोस्त रवि आता है कुछ किताब वगैरह देने के लिए जो आरके ने मंगवाए थे। बबली और उसका दोस्त आरके दोनों करीब आते हैं और मिलके ये गाना गाते हैं।
हम दोनों साथ रहे, जन्म जन्म।
आरके एक जमीन की नीलामी में जाता है। विजय वहाँ आके उससे ऊंचे दाम पर उस जमीन को खरीद लेता है। आरके सोच में पड़ जाता है कि विजय ऐसा कर ही क्यों रहा है। विजय गीता से कहता है वो शेखर और शीतल की दोस्ती में दरार डाल देगा। आरके के साथ साथ वो उसके बेटे को भी तकलीफ पहुंचाना चाहता है। गीता कहती है ये बात बिल्कुल गलत है। विजय नहीं मानता और शीतल के घर पहुंच जाता है और अपनी अगली कंस्ट्रक्शन की नींव शीतल से रखवाने के लिए कहता है। शेखर को इस बात से कोई एतराज नहीं है। फिर नींव रखने की खुशी में रात को एक पार्टी रखी जाती है।
मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
विजय हर तरह से कोशिश करता है कि शीतल और शेखर की दोस्ती में दरार पड़ जाए, इसलिए वो शीतल के साथ कॉफी पीने जाता है और जानबूझकर शेखर की गाड़ी की चाबी निकाल लेता है ताकि वो वहां ना पहुंच सके। शेखर को इस बात का पता चल जाता है और वो शीतल से शादी करने के लिए कहता है। शीतल हंसते हुए मान भी जाती है। बबली तेज कार चलाते हुए एक्सीडेंट कर बैठती है। विजय उसे लेकर आरके घर आता है। कामिनी उसके मरहम पर पट्टी लगाती है। विजय को ये बात बहुत अच्छी लगती है। बलवंत विजय से मिलने आता है और वो आरके को गाली देता है तो विजय उसे थप्पड़ मार देता है। गीता पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है, पर विजय टाल जाता है। आरके बबली के दोस्त रवि को नौकरी से निकाल देता है और बबली की शादी किसी बड़े घर में करना चाहता है। बबली गीता के पास आकर मदद मांगती है। तभी विजय आके कहता है कि वो अपने बाप का घर छोड़कर अगर चली आए तो वो उसकी शादी रवि से करवा देगा। गीता को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो विजय को ऐसा करने से मना करती है। शेखर और शीतल ये गाना गाते हैं।
ओ कभी कसमें न तोड़े उसे जीते जी न छोड़े जो हो यार अपना।
चाहे रोके दुनिया सारी उस पे कर दे सब कुछ बारी जो हो यार अपना।
ओ कभी कसमें न तोड़े उसे जीते जी न छोड़े जो हो यार अपना।
विजय और आरके एक बहुत बड़े डील के लिए एक ही मीटिंग में जाते हैं जहां एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट कॉलोनी का टेंडर होने वाला है। आरके अपने आदमी से कहता है कि ये काम उसे किसी भी कीमत में मिलनी चाहिए। तभी विजय आगे कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा। दोनों में जबरदस्त कहासुनी होती है। वर्मा साहब जो एक बेहद ईमानदार अफसर है और शीतल के पिता भी हैं, आरके उनके पास अपना आदमी भेजता है जो जाके कहता है कि विजय ने उन्हें 30,000 रुपए देकर के भेजे हैं और रिश्वत देकर वर्मा साहब बहुत नाराज हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आरके को दे देते हैं। विजय को जब इस बात का पता चलता है तो वो बौखला जाता है और उस कॉलोनी के ठीक सामने की सारी जगह खरीद लेता है। उसका कहना है कि वो वहां आरके से भी बड़ा मकान बनवा करके उसके आधे दाम पर उसे बेच देगा। गीता कहती है ऐसे तो वो बर्बाद हो जाएगा। विजय कहता है उसे बर्बादी की परवाह नहीं है, वो आरके को बर्बाद करना चाहता है। आरके के सारे फाइनेंसर भाग जाते हैं। वो अपने पैसे वापस मांग लेते हैं। आरके भी बुरी तरह से बौखला जाता है और बाजार से सूद पे पैसे उठाता है और यहाँ तक कि वो अपने घर को भी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है। विजय उन सभी सूद पर पैसे देने वालों से सारे पेपर्स खरीद लेता है ताकि आरके उसका कर्जदार हो जाए। आरके बलवंत से मिलके एक चाल चलता है, सीमेंट को मार्केट से गायब करवा देता है ताकि विजय का काम रुक जाए। विजय एंटी करप्शन ब्यूरो में फोन करके बलवंत का भांडा फोड़ देता है। बलवंत पकड़ा जाता है। बबली घर छोड़कर जाना चाहती है तभी शेखर आ जाता है। जब बबली ये बताती है कि विजय उसकी शादी रवि से करवा देगा, शेखर उसे थप्पड़ मारता है।
बबली इस वक्त यहाँ इस सूटकेस क्या कर रही है तुम? बबली मुझे बताओ क्या है?
मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ।
पागल मत बनो, बच्चों जैसी बातें नहीं करते। चलो
तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जबकि भाई होते हुए तुमने डैडी के सामने मेरा साथ नहीं दिया। तुमसे अच्छा तो वो गैर आदमी है जो मेरी मदद करने को फौरन तैयार हो गया। एंड आई एम गोइंग टू हिम।
कौन गैर आदमी तुम्हारी मदद करने को तैयार हो गया है?
मुझको विजय साहब ने कहा है कि वो रवि से मेरी
बेशरम अपने घर के दुखड़े जाकर बाहर सुनाती है अपने घर के दुश्मनों के सामने। चल अंदर चल।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
चलो अपने कमरे में बाहर निकली तो सामने तोड़ा बहुत हो चुका। आज मैं इस मिस्टर विजय कुमार से जरूर मिलूंगा।
मिस्टर विजय कुमार मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
आइए।
जो मुझे आपसे कहना है उसके लिए जगह बहुत छोटी है। जरा बाहर आइए।
क्या कर रहे हो तुम लोग?
हट जाओ गीता, बर्दाश्त की हद होती है। इस आदमी ने हमें बिजनेस में हजारों धोखे दिए। इसी आदमी ने शीतल और मेरे बीच दीवार बनने की कोशिश की। इसने हमारे खानदान के खिलाफ जो बन पाया किया, फिर भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं किया। लेकिन आज आज इसने जो हरकत की मैं सह नहीं सका। मैं पूछता हूँ क्या दुश्मनी है से हमसे, क्या बिगाड़ा हमने इसका?
क्या दुश्मनी है मुझे तुमसे, क्या बिगाड़ा है तुम लोगों ने मेरा? पूछना है तो अपने बाप से जाके पूछो।
शेखर मैं जानती हूँ कि आज तक तुम क्या नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन शायद तुम्हें इतना बुरा ना लगता अगर तुम ये जानते हैं कि बबली विजय की भी बहन है। शेखर विजय भी तुम्हारा भाई है।
शेखर अपने घर जाता है और आरके से कहता है कि वो बबली की शादी करवाएगा और ये कहते हुए वो घर छोड़कर चला जाता है, पर वजह नहीं कहता। शेखर विजय के घर जाके कहता है कि कल बबली की शादी है और बड़ा भाई होने के नाते कन्यादान उसे करना है क्योंकि पिता नहीं आ रहे हैं। विजय बहुत भावुक हो जाता है। बलवंत आरके के घर जाके उसे विजय के खिलाफ भड़काता है। आरके उससे कहता है कि विजय का कुछ करना पड़ेगा। बलवंत 5 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि वो विजय को शादी करने से भी रोक लेगा, मगर आरके कहता है कि वो विजय को मारना चाहता है। आरके के सारे कर्ज के पेपर लेके विजय उसके घर जाता है।
तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जितना बर्बाद कर सकते थे कर चुके, अब क्या लेने आए हो? तुमने मेरा बरसों का जमा बिजनेस खत्म कर दिया, पाए पाए के लिए मोहताज कर दिया तुमने मुझे। तुमने मेरी घरेलू जिंदगी में भी जहर घोला। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से।
नहीं मिस्टर आरके गुप्ता, अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। जिंदगी के दौराहे पर जो रास्ता आपने चुना था उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन आदमी अपने आप को अकेला ही पाता है।
तुम किस रास्ते की बात कर रहे हो? कौन सा रास्ता चुना था मैंने? तुम्हारी ये बकवास मेरी समझ से बाहर है।
हाँ ये आपकी समझ से बाहर है इसलिए कि ये बिजनेस नहीं है। हर वो बात जो बिजनेस ना हो आप नहीं समझ पाते मिस्टर आरके गुप्ता। शायद इसीलिए आप नहीं समझ सके उस औरत का दिल, उस औरत का प्यार, उस औरत की मोहब्बत, क्योंकि वो सब बिजनेस नहीं था।
ये तुम किसकी बात कर रहे हो?
मैं शांति की बात कर रहा हूं मिस्टर आरके गुप्ता। वही शांति जिसके प्यार को आपने अपनी जिंदगी से किसी खोटे सिक्के की तरह निकाल कर फेंक दिया। वही शांति जिसके मोहब्बत भरे दिल पर पैर रखकर आप कामयाबी के रास्ते पर आगे चले गए। वही शांति जो इतनी खुददार थी कि उसने आपसे यह भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्या अधिकार था तुमको? मैं उस शांति की बात कर रहा हूं मिस्टर आरके गुप्ता।
ये सब तुम कैसे जानते हो?
मैं सब कुछ जानता हूं मिस्टर आरके गुप्ता। उसकी तन्हाई और उसके दिल का एक एक जख्म, उसकी बदनामी और उसके माथे का एक एक दाग, उसकी गरीबी और उसके आंचल का एक एक पैबंद, मैंने सब कुछ देखा है और मुझे सब कुछ याद है। आपके हाथों मर्द वह पहले ही चुकी थी लेकिन चिता उसे 25 बरस बाद नसीब हुई और उस चिता की आग आज भी मेरे दिल में दहक रही है, इसलिए कि मैं उस अभागिन शांति का बेटा हूं मिस्टर आरके गुप्ता और आप मेरे नाजायज बाप हैं। یہ کتنا عجیب انصاف ہے قسمت کا، ایک دن دولت کے لیے آپ نے میری ماں کو چھوڑا تھا اور آج اسی دولت نے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیے، یہی ہے وہ دولت۔ آپ کی طرف سے میری ماں کو بدنامی اور غریبی کے سوا کچھ نہیں ملا مسٹر گپتا، لیکن آج میں اپنی ماں کی طرف سے آپ کو آپ کی ساری دولت واپس کرتا ہوں۔ آج آپ کے پاس آپ کی ساری دولت صحیح، لیکن آپ سے بڑا غریب میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔
ادھر بلوند ببلی کے ہونے والے پتی یعنی روی کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور بدلے میں وجے کو اکیلے بلاتا ہے۔ وجے اکیلے پرگتی میدان جاتا ہے جہاں بلوند اسے بہت مارتا ہے۔ تبھی شیکھر وہاں پہنچ جاتا ہے اور خوب لڑائی ہوتی ہے۔ بلوند دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور باندھ کر رکھتا ہے۔ پھر وہاں آر کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ وجے کا قتل وہ خود کرے گا اور پستول لے کے بلوند پر ہی تان دیتا ہے۔ بلوند چوک جاتا ہے، تب آر کے بتاتا ہے کہ وجے اس کا اپنا بیٹا ہے۔ ان لوگوں میں پھر سے زوردار لڑائی ہوتی ہے۔ بلوند وجے پر گولی چلا دیتا ہے جو آر کے اپنے سینے پر لے لیتا ہے۔ مرتے ہوئے آر کے وجے سے اپنی ساری گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا شیکھر کو نہیں ملنی چاہیے۔ دونوں بھائی مل جاتے ہیں اور نئی کمپنی شانتی راج کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں۔ کہانی اس طرح سے یہیں ختم ہو جاتی ہے۔